बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 जय राधा ब्रज मोहन राधा ब्रज मोहन राधा ब्रज मोहन राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद विष्णुपाद परमहंस परिवकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय श्री राधा ब्रज मोहन जी की जय श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयं भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 और अध्याय 11 और श्लोक संख्या 5। कृपया मेरे बात दोहराएं। अरुद्धो
परमाणुस्या
अरुद्धो परमाणुस्या त्रसरेणुस्त्रयस्मृतः त्रसरेणुस्त्रयस्मृतः जलार्करस्यम्यवगतः जलार्करस्यम्यवगतः खमेवानुपतन्नगान् खमेवानुपतन्नगा अरुद्धो परमाणुस्या त्रसरेणुस्त्रयस्मृतः जलार्करस्यम्यवगतः खमेवानुपतन्नगा। अरुद्धो परमाणुस्यात्त्रसरेणुस्त्रयस्मृतः जलार्करस्यम्यवगतः
खमेवानुपतन्नगात्
परमाणुस्यात् अरुन्दो परमाणु स्यात् तसरेणुस्त्रयस्मृतः द्विगुण परमाणु दो परम अणु परमाणु स्यात् बनते हैं त्रस रेणु षट परमाणु त्रयः तीन स्मृतः विचार किया हुआ जाल अर्क खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर धूप को रश्मि किरणों द्वारा अवगतः जाना जा सकता है। खम एव आकाश की ओर अनुपतन आगात ऊपर जाते हुए। अनुवाद और तात्पर्य हिस्ट बाय इंग्लिश श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद इस प्रकार से है। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु बनाते हैं और तीन द्विगुण परमाणु एक षड परमाणु बनाते हैं। यह षड परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षड परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तात्पर्य, परमाणु का वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया जाता है, किंतु जब ऐसे छह कण परस्पर मिलते हैं तो वे त्रसरेणु कहलाते हैं और इन्हें खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर आने वाली धूप में देखा जा सकता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय इष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतयातरोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभाव अखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तिर्षतां तमोन्दं संसारिना करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशुनमुपयामि गुरुं मुनीनां। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का मॉर्निंग सत्र में। सबसे पहले मैं प्रभु जी का से कृपा याचना चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा, क्योंकि मैं उनके समक्ष पहली बार बोल रहा हूँ। और एक्चुअली प्रभु जी के आप लोग का सौभाग्य है कि प्रभु जी का साथ मिल रहा है। हमने बहुत प्रयास किया था कि प्रभु जी वापी में रहें, लेकिन कहाँ वापी, हाँ वापी में पापी लोग रहते हैं, हमको ये सौभाग्य नहीं मिला। हालांकि प्रभु जी का संगत तो हमको काफ़ी मीरा रोड में प्राप्त हुआ। एक्चुअली में हमारा जो कृष्ण भावना मित का शुरुआत प्रभु जी के ही आश्रय में रह के हुआ। उनको चलना, उनको ही आदर्श बना के हम लोग चले आगे। तो कृपा तो रहा ही पहले से ही प्रभु जी का, और आज हम सबके बीच में है। और मैं उनके सामने कुछ एक्चुअली मेरी योग्यता नहीं उनके सामने बोलने की, क्योंकि जो भी उनको देखते हुए हम लोग सीखे हैं शुरुआत से ही, बचपन से ही, जब भी कृष्ण भावना में आए। लेकिन फिर भी प्रभु से कृपा याचना करते हुए ये आज का सत्र जो है हम प्रारंभ करेंगे। तो हम ये जो विषय चल रहा है बहुत सरल विषय है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं पढ़ रहा था सुबह से वही एक्चुअली देखा तभी समझ गया कि ये काल की गणना जो है ना बहुत एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी यथा बुद्धि हम थोड़ा से प्रयत्न करेंगे इसको समझने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि पिछले अध्याय में, अभी अध्याय हाल में ही स्टार्ट हुआ है, चार श्लोक ही गया है, तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो जो प्रसंग चल रहा है ये मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद चल रहा है ना। आगे चल के आएंगी बामन देव की कथाएं, बहुत सारी कथाएं आगे चल के आएंगी, लेकिन एक शुरुआत में वो इन सृष्टि का वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन, देवताओं के भी कई लोक में कई प्रकार की सृष्टियों का वर्णन, ये सब सृष्टियों का वर्णन पिछले अध्याय में हो चुका है। लगभग 10 सृष्टियों का वर्णन पिछले अध्याय में हुआ, और साथ साथ में देवताओं के लोक में कुछ 8 अंतिम, पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक में देवताओं के लोक में भी 8 प्रकार के सृष्टियों का भी वर्णन हुआ है अलग अलग। तो इस अध्याय का जो प्रारंभ है, इस अध्याय का जो नाम है वह परमाणु से काल की गणना। तो इस अध्याय का प्रारंभ मैत्रेय मुनि करते हैं कि मैत्रेय मुनि शुरुआत करते हैं कि जो ये अध्याय है, ऑलमोस्ट ये पूरा अध्याय जो है ना इसमें काल का ही वर्णन है, मतलब समय की गणना है ये पूरा अध्याय। तो लगभग लगभग श्लोक नंबर 1 से लेकर 14 नंबर श्लोकों तक वह समय के बहुत सूक्ष्म चीज से लेकर वर्णन करते हैं। हमारे नॉलेज में जहाँ तक हम सबको है कि हम समय की गणना कैसे करते हैं, सेकंड से हमारा स्टार्ट होता है जनरली, कुछ लोग इसे पहले भी जाते हैं लेकिन जनरली जो है ना सारे लोग सेकंड से करते हैं, सेकंड, मिनट, उसके बाद घंटा, उसके बाद दिन, फिर महीना, फिर साल, ये हमारा नॉलेज के अनुसार जो समय की गणना ये है। लेकिन अभी जो इन श्लोकों में बात चल रहा है ना, इससे कहीं परे की बात चल रहा है, मतलब इससे बहुत पहले, बहुत गुना पहले की बात चल रहा है। ये जो परमाणु का है ना, अणु जो है ना, बहुत सूक्ष्म है एक्चुअली। जैसे कि भगवद गीता में वर्णन है कि आत्मा का साइज का क्या वर्णन है भगवद गीता में, कि बाल के अग्रभाव का 1000वां भाग है ना, मतलब उसको हम उसका माप दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए एक उदाहरण दिया गया है ना। इसी प्रकार से ये जो अणु परमाणु है ना, इसकी जो गणना अभी के श्लोकों में चल रही है ना, ये सेकंड से भी कई बहुत पहले के स्तर की बात चल रही है। हमारे माइंड में सेकंड मतलब टिक, सेकंड हो गया है ना, तो इससे कई गुना कहते हैं कि ये सेकंड का 1800 भागवां का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। ये जो है ये गणना जो चल रहा है ना, सोचिए कितना सूक्ष्म होगा है ना, सेकंड का 1800वां भाग का गणना ये जो चल रहा है यहाँ पे। तो ये गणना को करते हुए मैत्रेय मुनि आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से समय की सबसे छोटी जो संख्या वहां से स्टार्ट करते हैं मैत्रेय मुनि, सबसे छोटी संख्या तो आज के ही श्लोक में है, जो कि कहते हैं कि ऐसे परमाणु जिसको कि बहुत सूक्ष्म है, जिसको देखा नहीं जा सकता, हमारे आंखों से दृष्टिगोचर है ही नहीं वो, तो ऐसे जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो सूक्ष्म है, ऐसा परमाणु जो है जिसको परमाणु कहते हैं, ऐसे दो परमाणु जब मिलते हैं तो एक द्विगुण बनता है ना। और ऐसे तो कहते हैं कि ऐसे 3 द्विगुण जब मिलते हैं एक साथ में, तो एक है जो 6 क्या बोलते हैं यहाँ पे, षड परमाणु, 6 परमाणु होता है। तो 6 परमाणु, और वर्णन है कि ये जो 6 परमाणु जब एक साथ में मिल जाते हैं है ना, 6 परमाणु जब एक साथ में मिल जाते हैं तो सूर्य की किरण में दृष्टिगोचर हो जाते हैं, जो कि हम देख सकते हैं, ये वर्णन आज के श्लोक में है। मतलब 6 परमाणु जब मिल गए तो सूर्य के किरण में दृष्टिगोचर होने लगे, जो कि बहुत सूक्ष्म, वो भी बहुत सूक्ष्म है। यहाँ पे वर्णन है श्लोक में कि जैसे कि सूर्य का प्रकाश, अभी अगर सामने से आएगा सूर्य का प्रकाश, तो कैसे विंडो खिड़की के छिद्र से बहुत बहुत एक कण निकल के अंदर के साइड आता है, जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन है वो भी बहुत सूक्ष्म है ना। ऐसे जो परमाणु जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे छह परमाणु को जब साथ में करते हैं तब वो हमारे सूर्य के किरणों में वो दृष्टिगोचर हो जाता है। ये बात का वर्णन यहाँ पे मैत्रेय मुनि करते हैं। तो विशेष करके परमाणु के चाल के अनुसार यहाँ पे समय का वर्णन हो रहा है, मैत्रेय मुनि कर रहे हैं। परमाणु के चाल के अनुसार समय का वर्णन एक एक करके आगे करते करते जाएंगे, और करते करते जाएंगे तो हमारे लेवल में हम जो सेकेंड मिनट्स घंटा महीने ये सब जो हम जानते हैं वहां पे भी आएंगे मैत्रेय मुनि। लेकिन ये अभी की जो बात चले ना बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म स्तर की बातें चल रही हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं कि जब छह परमाणु एक साथ मिल जाते हैं तो एक त्रुटि बनता है, उसको एक त्रुटि कहते हैं, है ना। और ऐसे सौ त्रुटि में जब मिलता है, मैं कहीं और से नहीं इसी अध्याय की बातें बता रहा हूँ जिसमें अलग अलग श्लोकों में मैत्रेय मुनि इस बात को वर्णन करते हैं, लेकिन मैं उसको सार के रूप में पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। आगे इसका डिटेल जो है ना संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, डिटेल आप लोग एक एक श्लोकों में पढ़ेंगे। तो छह परमाणु एक त्रुटि और ऐसे सौ त्रुटि मिलकर एक वेद बनता है। सौ त्रुटि जब मिलते हैं तो एक वेद बनता है, और ऐसे तीन वेद जब मिलते हैं एक साथ में तो एक लौ बनता है। एक कौन सा लौ पता है? साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लौ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हुए। सोचिए कि उस साधु संग का कितना महिमा है, विचार करिए, जो कि हमारे समय गणना में वो आई नहीं रहा। लौ मतलब समझ लीजिए अभी सेकंड भी नहीं आया है, उस लौ की बात चल रही है, सेकंड आया नहीं अब तक। तो ऐसे जब तीन वेद मिलते हैं तो एक लौ बनता है, और ऐसे जब तीन लौ मिलते हैं तो एक निमिष बनता है। निमिष काल चेतन महाप्रभु कहते हैं ना, आपके जो ब्रह है उनको निमिष काल के समय का वर्णन करते हैं चेतन महाप्रभु। तो तीन लौ जब मिलते हैं तो एक निमिष काल बनता है, है ना। और ऐसे तीन निमिष मिलते हैं तो एक क्षण बनता है। अभी थोड़ा हम हमारे वर्ड में आए, क्षण, जब हम क्षण की बात करते हैं तो वो भी कितना सूक्ष्म है वो देखिए, अभी भी सेकंड की बात नहीं आई है। ये भी क्षण जब बोलते हैं ना, सेकंड में तुलना है ही नहीं उसका, है ना। क्षण जब बात करते हैं तो सोचिए निमिष और उससे पहले लौ, है ना। तो साधु संघ की कितनी महिमा है सोचिए, है ना। तो ऐसे जब तीन निमिष मिलते हैं एक साथ में तो एक क्षण होता है, और ऐसे पांच क्षण जब मिल जाते हैं एक साथ में तो एक काष्ठ बनता है। एक काष्ठ अभी हमारे हमारे तुलना में आ गया। एक काष्ठ मतलब आठ सेकेंड, एक काष्ठ मतलब आठ सेकेंड। और ऐसे पंद्रह काष्ठ जब एक साथ में मिल जाते हैं तो एक लघु बनता है, मतलब दो मिनट। एक लघु दो मिनट का समय, एक लघु का जो समय काल होता है वो दो मिनट का होता है हमारे गणना के अनुसार, है ना। तो और ऐसे पंद्रह लघु जब मिलते हैं तो एक दंड बनता है, जो इसका कार्य सीमा होता है आधा घंटा, 30 मिनट्स, 30 मिनट का। और ऐसे दो दंड जब मिल जाते हैं तो एक मुहूर्त बनता है, है ना। मुहूर्त की जब चर्चा करते हैं मुहूर्त, तो एक मुहूर्त बनता है। और ऐसे कम से कम छह से सात लगभग मुहूर्त जब एक साथ में जब मिलते हैं तो एक प्रहर बनता है, और उसका समय अवधि है 3 घंटे का। एक प्रहर जिसको बोलते हैं ना, उसका समय अवधि 3 घंटे का होता है, है ना। और ऐसे चार प्रहर मिलते हैं एक साथ में तो एक दिन बनता है, और एक दिन कौन सा, 12 घंटे। 24 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, 24 घंटा मतलब 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। तो जब चार प्रहर एक साथ मिलते हैं तो एक दिन बनता है, और ऐसे ही चार प्रहर और मिलते हैं तो क्या होता है, टोटल 8 प्रहर जब होते हैं तो 24 घंटा मतलब एक दिन और रात बनते हैं, है ना। मतलब एक दिन में जो कि 24 घंटा होते हैं, इस 24 हम जिसको 24 घंटा बोलते हैं उसमें दिन और रात दोनों हो जाते हैं। तो जो 24 घंटा हम बोलते हैं इसके अंदर 8 प्रहर होते हैं, है ना, 8 प्रहर होते हैं, तो जो कि 3-3 घंटे के होते हैं, है ना, 8 3 24, गणित कैलकुलेशन। तो इस प्रकार से जब 8 प्रहर मिलते हैं तो 24 दिन और रात बनते हैं, 24 घंटे होते हैं। और उसके बाद ये 15 दिन, जब 15 दिन मिलते हैं एक साथ में तो एक पक्ष बनता है, है ना। दो पक्ष होते हैं ना महीने में, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष, है ना। तो 15 दिन जब मिलते हैं तो एक पक्ष बनता है, और जब दो पक्ष मिलते हैं तो क्या होता है, एक महीना में बनता है। दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जब दोनों को लेंगे तो एक महीना बनता है, है ना। तो और ऐसे दो महीने जब साथ में मिलते हैं तो एक ऋतु बनता है, ऋतु। दो महीना एक साथ में होता है तो एक ऋतु, लगभग 6 ऋतुएं होती हैं, है ना। पूरे साल में 12 महीने में 6 ऋतुएं होती हैं, है? तो जब दो महीना मिलते हैं तो एक ऋतु बनता है, और ऐसे 6 ऋतु जब मिल जाते हैं तो एक वर्ष बनता है। तो इस प्रकार का एक गणना है पूरा इस अध्याय में, मैत्रेय मुनि जिसका वर्णन करते हैं। तो अभी जो वर्णन चल रहा है इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी गणना से बहुत आगे की है बात, ये इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये सेकंड से बात करते तो शायद हम उसको समझने में अपना बुद्धि है कैलकुलेशन लगा लेते, लेकिन ये सूक्ष्म स्तर की बातें चल रही हैं। तो वहां से वर्णन करते हुए फिर करते हैं आगे, वर्णन करते करते काल अवधि का वर्णन करने के बाद फिर वो देवताओं के कुछ वर्णन करते हैं, देवताओं की अवधियों का, कि किस प्रकार से ये जो एक वर्ष है हमारा वो देवताओं का 24 घंटा है। कितना विचार करिए, हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटा। हम सोचते हैं कैसा लगता है हमारा एक दिन देवताओं का, एक साल हमारा देवताओं का 24 घंटा ही होता है, एक ही दिन होता है ऐसा, है ना, कैसा लगता है सुन के, है ना। लेकिन अभी आप विचार करें कि इसी पृथ्वी लोक में जहां पे हम रह रहे हैं ऐसे कितनी जीवात्माएं हैं, बहुत सारे जीवात्माएं, चीट पतंग इत्यादि बहुत सारे लोग हैं जो कि जन्म लेते हैं, उनकी जीवन अवधि होती है 12 घंटे, 24 घंटे, है ना। तो अभी वो लोग विचार करें, मान लीजिए वो कीटाणु मिलकर विचार करें कि इसी पृथ्वी लोक में ऐसे मनुष्य लोग रहते हैं जिनका 100 साल उम्र होता है, है ना, उनको कितना बड़ा लगेगा। जैसे उनके लिए हम बड़े हैं, है ना, विचार करें वो लोग तो हम बड़े, वैसे हमारे लिए देवता है बड़े ऐसा। तो इस समय की गणना, तो इस प्रकार से मैत्रेय मुनि देवताओं के बारे में वर्णन करते हैं, और देवताओं के बारे में वर्णन करते करते वो कुछ ब्रह्मा के समय का भी वर्णन करते हैं। आगे ब्रह्मा का भी समय काल का गणना हुई है, ब्रह्मा के समय काल की गणना करते हैं, और फिर थोड़ा से झलक आध्यात्मिक जगत का भी वर्णन करते हैं मैत्रेय मुनि, थोड़ा से वहां पे वर्णन है आध्यात्मिक जगत का, और उसके बाद फिर भगवान के बारे में वर्णन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो सूक्ष्म चीजों से लेके वो लास्ट तक कहां पहुंचते हैं, भगवान तक। ये बताना चाहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगत्याम जगत, ये संसार में जो कुछ भी है पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ भगवान के अंडर में है। एक गणना को बताकर ये बोलते हैं कि भगवान की ही एक सृष्टि है जो कि भगवान के ही अंदर आते हैं, और कहते हुए अंत में, यह इस अध्याय के अंत में सार रूप में क्या बोलते हैं अंत में, कि भगवान की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं मैत्रेय मुनि कि आद्यवंत अंत कौनते न ते सूर्यमते बुधा, लास्ट में अंतिम कैलकुलेशन देते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इस समय गणना में नहीं फंसता है है ना। ऐसे भी तो आप लोग फंसते ही नहीं क्योंकि आप लोग कथा प्रेमी है सूरत के भक्त लोग सबको कथा प्रेमी है, कथा में ही रुचि लेते हैं। फिर भी उनकी महानता को प्रस्तुत करने के लिए मैत्रेय मुनि इन काल की गणना को प्रस्तुत करते हैं, और अंत में बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है और इसमें कभी भी रमता नहीं, उसके लिए केवल भगवान के कथा का श्रवण करना, कथा में रुचि लेना और उसमें रस लेना वही उसको भाता है, वही उसमें ही रमता है। तो ये श्लोक का ये सारा आज में कि 6 परमाणु मिलकर वो दृष्टिगोचर होते हैं, इस बात का वर्णन मैत्रेय मुनि श्लोक में करते हैं। इससे भी और आगे कैलकुलेशन करें, एक्चुअली जो कैलकुलेशन वाला मैटर है ना वो कम समय के लिए अच्छा लगता है, इसी को बड़ा बना देना सब नींद आने लगेगा क्योंकि वो नहीं हजम होता है, नहीं जाता है अंदर, है ना, बुद्धि में घुसता ही नहीं है। तो इस प्रकार से अभी हम कैलकुलेशन क्या निकाले अंतिम में कि बुद्धिमान व्यक्ति इसमें नहीं रमता है, वो क्या है, भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, कथा में रुचि लेता है। तो आइए हम भी एक कुछ कथाओं का वर्णन करते हैं, ठीक है, इस श्लोक से। हरे कृष्णा। तो विशेष अभी समय चल रहा है, विशेष समय चल रहा है ना, नवरात्रि का समय चल रहा है, विशेष है नहीं, नवरात्रि भोग रात्रि जिसको अभी के यू लोग नाम दे दिए हैं कलयुग के पापी लोग भोग रात्रि, इसको भोग रात्रि, नवरात्रि को भोग रात्रि बना दिया ना, हम लोग सब जानते हैं, अवगत हैं और सूरत में तो काफी प्रचलित है। तो लेकिन ये जो समय है ना बहुत विशेष समय है एक्चुअली, लेकिन आजकल के कलयुग के जीव आत्माएं इतना भ्रमित हो चुके हैं है ना कि केवल इस समय को केवल भोग के दृष्टिकोण से देखते हैं। सत्य बात है, भोग की दृष्टिकोण से ही देखते हैं है ना, पूरे साल में इंतजार करते हैं इन 9-10 दिनों का है कि कितना बड़ा भोग इंद्र तृप्ति करने का एक साधन एक मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें रोक टोक नहीं मिलेगा, सब शासन भी हमको मदद करेगा इंद्र तृप्ति करने के लिए है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि ये जो समय है ना बहुत विशेष समय है, विशेष करके इस समय में इस नवरात्रि के अंतर्गत अभी 2 दिन पहले दुर्गा पूजा हुआ और आज दशहरा भी है, वैष्णव तिथि के अनुसार तो कल है लेकिन स्मार्त तिथि के अनुसार आज ही है दशहरा। तो ये जो 10 दिन का समय काल है इसके अंदर हम अगर चाहे तो ये माँ दुर्गा का और भगवान का कृपा को, बहुत विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विशेष दिन है, विशेष दिन चल रहा है। तो दुर्गा पूजा कहा गया है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण, जब ये भगवान राम ने प्लान कर लिया कि अभी रावण के साथ युद्ध करना है, रावण के साथ अभी जितने भी समझाने का प्रक्रिया सब पूरी कंप्लीट, अभी रावण समझने वाला नहीं है, हनुमान जी भी जाके आ गए, अभी जब भगवान ने बना लिया प्लान कि अभी युद्ध करना ही है, तो उस समय कहा गया है कि दुर्गा माँ दुर्गा की उपासना करते हैं प्रभु राम, रामचंद्र जी दुर्गा माता की उपासना करके उनको प्रकट कराते हैं और उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देवी कि आप आशीर्वाद दीजिए हमको, क्योंकि इस संसार का जो सबसे बड़ी आसुरी शक्ति है मैं उसका हनन करने जा रहा हूँ। भगवान रामचंद्र जी माता दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, कभी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं युद्ध में, जब भी विचार कर लिए कि भी रावण के साथ युद्ध करना ही है, तो इस प्रकार से वो आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो असुर है, ये जो संसार का सबसे आसुरी शक्ति, बड़ा आसुरी शक्ति है, ये जो असुर है ना वह क्या है, आपके पति का महान भक्त है, शिव जी का भक्त है ना रावण है ना, इसलिए आज हमारे ऊपर आप कृपा करिए क्योंकि कहीं आपके पति देव कभी रुष्ट ना हो जाए अगर मैं उसका हनन करूंगा, तो इस प्रकार से वो कृपा याचना करते हैं ना। संसार में जब कोई व्यक्ति किसी से कंट्रोल नहीं होता ना, तो अंतिम में पत्नी से कंट्रोल होता ही है ना। भगवान रामचंद्र ने पहले से ही माता दुर्गा को प्रसन्न करके उनकी कृपा याचना करते हुए कि हम जिस आसुरी शक्ति का विनाश करने जा रहे हैं वो आपके पति का महान भक्त है, रावण शिव जी का महान भक्त था। तो रावण जितना 5 मिनट है ना, केवल 5 ही मिनट है ना, 10 मिनट, 10 मिनट ठीक है, 10 मिनट में कथा तो बड़ी लंबी है लेकिन संक्षेप में हम 10 मिनट में कुछ कहेंगे। तो जब ये रावण जो था ये पुलस्त्य ऋषि का वंशज था, ब्राह्मण उत्तम कुल से था रावण, बहुत उत्तम कुल था, ब्राह्मण था रावण। लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण कोई जन्मजात ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण नहीं बोल सकते, वो कर्म के अनुसार ब्राह्मण बनता है। एक ब्राह्मण का जो कार्य है यजन आजन पठन पाठन इस प्रकार का, अगर वो कार्य नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। संसार में अपने आप को ब्राह्मण करने वाले बहुत सारे मतलब घमंड के रूप में घूमते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ, लेकिन उनके कार्य कोई भी ब्राह्मण के नहीं रह गए आजकल। सब एक्चुअली देखा जाता है इस कलयुग में जन्म ना जायते शूद्र, सब कुछ सब लोग शूद्र है एक्चुअली, लेकिन कर्म के अनुसार वह ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, गुण। इसलिए भगवान कहते हैं ना चातुर्वर्ण मया सिष्टम गुण कर्म विभागश, कर्म विभागश, एक कर्म के अनुसार उनको विभाजन किया गया हुआ है, कौन क्षत्रिय ब्राह्मण है, गुणों के अनुसार कर्मों के अनुसार वो ब्राह्मण बनता है। लेकिन ये रावण था तो ब्राह्मण, लेकिन इसके कार्य जो है वो ब्राह्मणत्व के कार्य नहीं थे, लोगों को बल्कि ब्राह्मणों को तकलीफ देने वाले कार्य थे रावण के। तो जो कि बहुत बड़ा राक्षस था रावण, और भगवान राम ने जब ये सोचा कि अभी इस आसुरी शक्ति का हनन करना चाहिए और माता सीता को वापस लाना चाहिए, तो वह निकल पड़े कहाँ पे, समुद्र के तट पे गए, क्योंकि लंका तो अभी लंका में माता सीता लंका में है, अभी लंका जाना है तो लंका तो ऐसे जा नहीं सकते, समुद्र है इतना बड़ा विशाल समुद्र, उसको पार करना पड़ेगा। तो उस समय भगवान रामचंद्र जब समुद्र के किनारे पे पहुंच गए, पहुंचकर दशहरा है ना, इसलिए थोड़ा सा रावण के बारे में, भगवान राम के बारे में बोल रहे हैं। वैसे भी इस पीरियड में एक और आसुरी शक्ति का धानन हुआ था, वो है महिषासुर, जिसको दुर्गा देवी ने मारा था। दो आसुरी शक्तियों का विनाश हुआ था इस पीरियड में, है ना। दोनों बहुत महत्वपूर्ण शिक्षणीय है एक्चुअली, दोनों पास टाइम्स। तो दशहरा है, तो हम भगवान राम और रावण का जो युद्ध है उसके बारे में थोड़ा से करके फिर खत्म करेंगे। तो भगवान राम अभी पहुंच गए कहाँ पे, वह समुद्र के किनारे पहुंच गए, और किनारे पहुंचकर वहां पे उन्होंने शिव जी की आराधना की। आराधना कहा जाता है कि जब इस भगवान रामचंद्र वहां पे बहुत तपस्या किए, शिव जी को प्रसन्न किए, बहुत बड़ा एक फेस्टिवल मनाया गया, उसमें बहुत सारे लोग को इनवाइट किया गया था। हाँ, और उसमें रामचरितमानस में वर्णन है कि उस समय रावण भी आया था उसमें, क्योंकि वो ब्राह्मण था ना, और उसको भी बुलाया गया था, और वो भी आया था वहां पे उस जगह पे। तो अभी भगवान रामचंद्र ने पूछा, सबसे पहले तो उन्होंने समुद्र देवता को, क्योंकि समुद्र में को पार कैसे करेंगे कैसे, इसलिए उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया भगवान रामचंद्र ने, समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए। कितनी शिक्षणीय बात है कि अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है तो तपस्या करना पड़ेगा, है ना। किसी भी चीज की प्राप्ति करना है तो तपस्या करना पड़ेगा, बिना तपस्या के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान रामचंद्र ने 3 दिन का, हालांकि लक्ष्मण ने मना किया, प्रभु क्या आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, अपने सारंग धनुष को उठाइए और उसके टंकार से ही समुद्र देव प्रकट होगा, उनको प्रकट होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र ने अपनी मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान थे ना, उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, उन्होंने 3 दिन तक उपवास रखा। लेकिन 3 दिन तक उपवास रखने के पश्चात भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। जब प्रकट नहीं हुए तो भगवान रामचंद्र बहुत क्रोधित हुए, और उस समय वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि मेरा धनुष लेकर आओ, क्योंकि अभी तक मेरा जो शांत स्वभाव है सब लोगों ने देखा, आज मेरा उग्र स्वभाव देखेंगे। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जब क्रोधित हुए, अपने धनुष को लक्ष्मण लाके उन धनुष तीर बाण को लाके देते हैं, जब भगवान रामचंद्र क्रोधित हो जाते हैं तो वर्णन है कि उस समय समुद्र का जो जल है ना उबलने लगा, है ना, पूरा एकदम आग की तरह उबलने लगा, और जितने भी उसमें प्राणी थे ना सब लोग मरने लगे। और इस डरवश तुरंत ही वो समुद्र के जो देवता थे वो प्रकट, वरुण देव जी वो प्रकट हो गए भगवान राम के सामने। अब प्रकट हो गए, प्रकट होने के पास उन्होंने बहुत सारे रत्न, समुद्र के रत्न लेकर आए। ऐसा उस प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि कभी भी जब भगवान के सामने हमको जाना चाहिए तो उनको भेंट लेके जाना चाहिए, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, समुद्र के देवता यहाँ पे प्रकट हुए हैं, और क्या समुद्र के रत्न को लेकर भगवान के सामने प्रकट हुए उनको भेंट देने के लिए। हालांकि इस संसार की हर एक वस्तु, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगत्याम जगत, इस संसार की जितनी भी वस्तुएं सामग्री है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, नहीं गोचर है, जो भी है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। लेकिन कहा गया कि उसी भगवान की संपत्ति में से अगर हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पिता के 2 पुत्र हैं, उन्होंने दोनों पुत्रों को 100-100 रुपया दिया, 100-100 रुपया दिया, और बोला कि ठीक है जाके अपना जो भी कुछ करना है कर लो, 100-100 रुपया दोनों पुत्रों को दिया। एक पुत्र गया 100 रुपया के लेके एक होटल में बैठा और खा लिया, निकल उठ गया। लेकिन दूसरा जो पुत्र था एक स्वीट के दुकान, मिठाई दुकान पे जाया, वहां पे से मिठाई लेकर आया और अपने पिताजी के पास लाके बोला कि पिताजी आप भी खाइए, मैं आपके लिए लाया। तो पिताजी किससे प्रसन्न होंगे ज्यादा, हालांकि दोनों उसके ही पुत्र है, दोनों उसके पुत्र है। लेकिन ये जो पुत्र है, हालांकि पिता का ही पैसा है, पिता को मालूम है कि मेरा ही पैसा है, लेकिन उस पैसे को लेकर वो हमारी सेवा में लगाया, तो पिता कितना प्रसन्न होंगे। और नेक्स्ट टाइम जब देंगे पैसा तो उसको 100 रुपया ही देंगे, और कहीं इसको 1000 रुपया भी दे सकते हैं, है कि नहीं। और ऐसे ही अगर हम भगवान की संपत्ति, सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान की संपत्ति को अगर भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं तो हम बोलते हैं ना, हम 1 देते हैं तो भगवान 1000, भगवान के 1000 हाथ हैं, 1000 गुना देते हैं हमको, हम 1 रुपया देंगे तो 1000 में कन्वर्ट होता है ना। तो इस प्रकार से समुद्र देव प्रकट हुए, और समुद्र देव प्रकट होने के बाद बोले कि प्रभु देखिए, आप चाहते हैं कि समुद्र का पानी सूख जाए और आप आसानी से लंका चले जाए तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप ही ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और आप ही इस नियम को तोड़ेंगे तो वो ठीक नहीं है, आप कुछ ऐसा कार्य करिए कि पूरे संसार में आपका नाम हो। तो इस प्रकार से समुद्र देवता के कहने पे सेतु का निर्माण करने का जो है सोचा गया कि समुद्र के ऊपर सेतु बांधा जाए, तो कैसे बधेगा प्रश्न उठा, कैसे बधेगा। तो उस समय वरुण देव ही बताते हैं कि आपके ही सेना में जो नल नील नाम के दो बानर हैं, वो इस कार्य को बहुत आसानी से संपन्न कर सकते हैं, तो आप सेतु बांधिए। और तब उसके बाद इस प्रकार से वरुण देव के कहने के पश्चात तुरंत ही जितने भी बानर सेना थे सारे लोग मिलकर सेतु को बांधना स्टार्ट किए। बड़े बड़े चट्टान पर्वत अपनी सक्षमता के अनुसार सब लोग उठा उठा के, और लास्ट में और नल और नील क्या करते थे, भगवान प्रभु का नाम उस पत्थर के ऊपर लिख के डाल देते थे। और बहुत एक्चुअली ये जो पत्थर के ऊपर नाम लिखना और पत्थर नहीं डूबना, इसको ये सारी चीजें बहुत सारे पास्ट टाइम्स है, बहुत सारे शिक्षणीय बातें हैं कि किस प्रकार से प्रभु नाम राम के नाम की महिमा है। क्योंकि भगवान रामचंद्र ने देखा कि अरे नाम लिखने से पत्थर तैर रहा है ना। इस संसार एक्चुअली भव सागर के समान है, दुख का सागर है, हम भी इस संसार में तड़प रहे हैं। संसार दावा नल त्राणाय कारुण घनाघनत्वम, जल रहे हैं सब लोग अग्नि में, ये दावा नल के समान है। जिस प्रकार से उस समुद्र में पत्थर पत्थर को समुद्र में डाले तो डूब जाता है, लेकिन उस पत्थर के ऊपर जो भगवान के नाम का लिख देते हैं तो डूबता नहीं है, तर जाता है। उसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार में, ये भवबंधन में, ये भौतिक सागर में हम लोग डूब रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान के नाम का शरण अगर ग्रहण कर लेते हैं, वहां पर रामचरितमानस में बहुत ही नाम की महिमा का वर्णन हुआ है, चारे युगों में किस प्रकार से नाम की महिमा, और विशेष करके इस कलयुग में नाम की किस प्रकार से महिमा है, बहुत विस्तृत वर्णन हुआ है भगवान राम के नाम के वर्णन महिमा का। तो इस प्रकार से सेतु का निर्माण हुआ, और सेतु का निर्माण होते होते जब ये सेतु का निर्माण पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, सारी जो सेना है अभी लंका में पहुंच गई, और लंका में पहुंचते ही सब लोग, क्योंकि इतने बड़े उद्यम में लगे हुए थे, पुल का निर्माण किया, इतने बड़े सेतु को बांधना साधारण बात नहीं है, कितने 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 सारे चट्टानों को ला ला के सब सेतु को बांधा, और कैसे करके वो लंका में पहुंच गए। ऐसा भी वर्णन है कि वो जो सेतु था ना थोड़ा पतला था, लेकिन सेना इतनी ज्यादा थी कि सब लोग एक्चुअली प्रभु राम का दर्शन करते हुए चलना चाहते थे। तो बहुत रास्ता छोटा है और सब लोग प्रभु राम के दर्शन कैसे कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन सब लोग करना चाहते और सब लोग कर भी रहे थे वहां पे दर्शन। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस समय जब सेतु बंध गया ना तो उस सागर के जितने भी जीव जंतु थे ना उस सेतु के चारों बाजू वो भगवान राम के दर्शन करने के लिए वो आ गए, तो ऑटोमेटिक वो एक सेतु ही बन गया, एक पुल बन गया। तो जितने भी बानर सैनिक जितने भी जो लोग थे ना वो सेतु पे चल रहे हैं, उनके ऊपर चल रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। क्यों यहाँ पे वर्णन आता है कि वो जीवात्माएं जो है, देखिये उसमें मगरमच्छ भी है और मछली भी है, मतलब जो स्वभाव से जन्मजात एक दूसरे के बैरी होते हैं, जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मगरमच्छ है वो दूसरे को खाता है या फिर बंदर को खा जाता है, तो इस प्रकार से स्वभाव विरुद्ध लोग बहुत सारे लोग थे, सारे जीवात्मा है, लेकिन अपने अपने स्वभाव को वो भूल गए। क्यों भूल गए, क्योंकि सबका लक्ष्य जो सबका उद्देश्य था एक ही था, वो प्रभु राम के दर्शन करना। जब लक्ष्य एक रहेगा तो निश्चित रूप से वहां पर शांति होगा, को जब लक्ष्य एक होगा तो शांति, संसार के लोग शांति स्थापित करना चाहते हैं तो हमको लक्ष्य को एक रखना पड़ेगा। जब एक लक्ष्य रखेंगे, सोचिए कि यही पे इतने ही सभा बैठी हुई है, सोचिए अभी हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक लोग भी बोल रहे हैं बात कर रहे हैं नहीं, क्योंकि लक्ष्य एक, उनके बारे में चर्चा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सभा खत्म होने दीजिए, देखिए आपस में शुरू बातचीत शुरू, तो लक्ष्य जब एक है तो इसलिए वहां पर लक्ष्य एक होने के कारण एक दूसरे का शत्रु भी वो मित्र के जैसा हो गया। मतलब उसके ऊपर बंदर मगरमच्छ के ऊपर चढ़ के कूद रहे, लेकिन कुछ फर्क नहीं, कुछ वो खाने के लिए नहीं, क्योंकि लक्ष्य एक है भगवान राम के दर्शन। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र पहुंच गए लंका में पहुंचकर लंका के जो उस तट पे एक पर्वत, उसके तलहटी में उन लोगों ने उस रात्रि विश्राम किया। संध्या समय हो गया था, उस रात्रि उन्होंने विश्राम किया, और विश्राम करने के पश्चात सुबह जब हुआ तो प्रभु रामचंद्र ने एक फिर से इष्ट गोष्ठी बुलाया, मीटिंग, कोई भी कार्य करने से पहले इष्ट गोष्ठी मीटिंग बुलाते हैं। तो मीटिंग बुलाकर प्रभु रामचंद्र ने यह प्रस्ताव रखा कि एक बार अंतिम, हम भले से लंका में पहुंच चुके हैं इतना मेहनत करके, किसको मारने के लिए? रावण को मारने के लिए। लेकिन एक बार अंतिम प्रस्ताव लेके किसी को जाना चाहिए और रावण को बताना चाहिए कि प्रभु राम आ चुके हैं, युद्ध तो पक्का है और तुम्हारा सर्वनाश भी पक्का है, लेकिन अभी भी वो अगर सीता को छोड़ देता है तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। अंतिम प्रस्ताव के लिए प्रभु राम उस समय वहां पे कहते हैं। तो अभी अंतिम प्रस्ताव लेके जाएगा कौन? तो वहां पे बाली पुत्र अंगद, जामवंत जी ने सलाह दिया कि बाली पुत्र जो अंगद है, अंगद को भेजा जाए। तो अंगद वहां से निकल के वो लंका रावण के दरबार में पहुंचे। कहा जाता है कि अंगद को कोई नहीं रोका। क्यों नहीं रोका कोई? इससे पहले हनुमान जी एक बंदर आ चुका था इससे पहले, तो उन लोगों ने उसके सारे उद्यम को देख चुके थे, इसलिए कोई भी लंका के कोई भी निवासी इस बानर को बोला, अंगद को बोला ही नहीं कुछ, सीधा वह रावण के दरबार में पहुंच गया, सीधा रावण के पास, है ना। क्योंकि जब भी हनुमान जी आए थे तो उन्होंने पूरा लंका को जला के राख कर दिया था, तो लोग को अच्छे से एक्सपीरियंस था। क्योंकि सोचिए, एक घर जब जल के राख हो जाता है तो उस घर को बनाना है, उसके अंदर वापस टीवी फ्रिज पंखा ये सब डालना, कितना मेहनत वाला काम है। वो लोग स्मरण करने लगे, एक बंदर आया तो पूरा जला के राख कर दिया, कितने साल बीत गए हम लोग को वापस घर खड़ा करने के लिए, पूरा लंका को दहन करके, केवल रावण का दरबार नहीं पूरा लंका को जला दिया था उन्होंने, क्योंकि सब लोग ने अग्नि दिया था ना उस पूंछ में, सब लोगों ने अग्नि दिया था एक एक करके। तो हनुमान जी देखे कौन कौन कितना अग्नि दिया तो इस प्रकार से सारे लंका को जला दिए। इस बात का अनुभव हो चुका था, इसलिए अंगद को कोई रोका नहीं, नहीं भाई ये बहुत खतरनाक लोग है, इसको रोको मत, जाने दो। सीधा वो रावण के पास गया और रावण के पास जाकर सबसे पहला अपमान रावण ने यही किया कि वह उनको कोई आसन प्रदान नहीं किया। ये अशुभ लोग होते हैं। एक्चुअली हमारा दुश्मन भी हमारे घर पे आता है ना, उसको बैठाना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए और उसको जलपान कराना चाहिए, ये शिष्टाचार है। लेकिन रावण ने ऐसा किया ही नहीं। कोई बात नहीं, अंगद तो अपना आसन तो साथ में लेकर अपने पूंछ को घुमाया और ऊंचे आसन पर बैठ गए, रावण से भी ऊंचे आसन पर बैठ गए और अपना प्रवचन चालू किया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सब कुछ प्रवचन किया कि अभी भी सुधर जाओ तुम, ऐसा है ऐसा, सबको बहुत समझाया। एक्चुअली रावण के जीवन में समझाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हुए, समझाए, लेकिन रावण समझा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण जैसा दुष्ट आत्मा है ही नहीं संसार में कोई, क्योंकि कौन समझाया उसके? देखिए, हनुमान जी समझाए, अंगद समझाया, मंदोदरी समझाया, मंदोदरी ने उनके पतिव्रता स्त्री उसको समझाया, उस रावण का पुत्र भी वो भी समझाया। इतने सारे लोग को समझाने के बाद भी रावण बिल्कुल नहीं माना। तो इस प्रकार से रावण ने आदेश दे दिया कि इस बंदर को पकड़ के मार डालो इधर, क्योंकि क्रोध हो गया ना, भगवान के बारे में बता रहा था, शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, क्रोधित हो गया और मार डालो करके जैसे ही आदेश आया, और सारे लोग जैसे ही चले अंगद को मारने के लिए, अंगद उतर गए आसन से नीचे, उतर कर अपने पैर को जमीन पे गाड़ दिया। उन्होंने बोला, रावण मारने की बात करता है तू, अरे तुम्हारे सैनिक में से कोई भी, तुम्हारे प्रजा में से चाहे कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो मेरे पैर को अगर हिला देगा, अगर एक क्षण तक हिला देगा ना केवल पैर को, तो मैं तुमको वादा करता हूं कि राम सहित सैनिक को लेकर और सीता को तुम्हारे पास छोड़कर मैं वापस चला जाऊंगा। सोचिए कितना बड़ा विश्वास, मैं जब पढ़ रहा था तो कितना बड़ा विश्वास है अंगद को भगवान के ऊपर, कि अगर मेरे पैर को हिला दिया तूने, कोई भी तुम्हारी प्रजा में से अगर हिला दिया मेरे पैर को, मारने की तो बात छोड़ो, पैर को हिला दिया ना, तो मैं सीता को तुम्हारे पास छोड़ के भगवान राम को साथ में लेकर वापस चला जाऊंगा। कितनी बड़ी विश्वास, देखिए विश्वास की बात ना, कितना बड़ा विश्वास था अंगद को। यहां से हमको शिक्षा लेना चाहिए कि विश्वास अवश्य रचवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, हमको विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहने का सारे सैनिक आया, आदेश दिया रावण ने कि मार डालो, हिला डालो पैर को इसको, चला जाएगा, ऐसा ही युद्ध करने की जरूरत नहीं। तो सब लोग आए उसके पैर को, लेकिन कोई हिला नहीं पाया। अंत में रावण आया, रावण जैसे ही उनके चरणों को पकड़ा उस समय अंगद स्वयं उस पैर को हटा लिए। कह रहे मूर्ख, अगर गिरना है ना प्रभु राम के चरणों में गिर, उनके चरणों में गिर जाएगा तो 100% भले से यहाँ ये युद्ध करने आया लेकिन उनके चरणों में चला गया तुम ना, उनको तुमको तो जीवन दान तो 100% मिल जाएगा, 100% जीवन दान मिल जाएगा। इसलिए गिरना है तो तुम उधर गिरो, मेरे चरण में मत गिरो, प्रभु राम के चरण में गिरो। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रस्ताव लेके गए, लेकिन रावण नहीं माना, युद्ध फाइनल हुआ। उसके बाद भगवान रामचंद्र और रावण में युद्ध चला, कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से स्टार्ट हुआ और 10 दिन तक युद्ध चला। बहुत विशेष ये युद्ध का वर्णन जब करेंगे तो कितनी शिक्षाएं मिलती है वहां पे इन 10 दिनों में, जो कि हम भोग रात्रि बना के रखे हुए हैं, लेकिन इस बहुत शिक्षणीय 10 दिन है, बहुत बहुत सारे पास्ट टाइम्स है इसके अंदर। तो 10 दिनों तक युद्ध चला और रावण मर नहीं रहा था, रावण नहीं मरा था क्योंकि उसके नाभि में जो ना अमृत कलश था, वो जब भी कटता था उसका सिर, 10 सिर वाला था ना, कटता था जब सिर तो वापस जुड़ जाता था क्योंकि अमृत था, मरता ही नहीं था। प्रभु राम को मालूम था कि अमृत कलश जब तक सुखाएंगे नहीं तब तक ये मरने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु राम जो है एक अंतिम परीक्षा विभीषण के ले रहे थे, क्योंकि विभीषण उस जगह को रावण की संगति को त्याग कर प्रभु का शरण लिया हुआ था, विभीषण ने एक अंतिम परीक्षा ले रहे थे और विभीषण के वो देख रहे थे कि विभीषण क्या बोलता है, और विभीषण के सलाह पे प्रभु ये मरने ही वाला नहीं है, ये तो जब तक उसके अमृत को आप सुखाएंगे नहीं तब तक ये नहीं मरेगा। और जब से ही विभीषण ने इस बात को बताया प्रभु राम को, वो अंतिम परीक्षा जो लिए विभीषण का, फिर उसके बाद प्रभु राम ने तुरंत ही एक साथ में 31 बाणों को छोड़ा, वर्णन है एक साथ में 31 बाणों को छोड़ा, 20 उसके भुजाओं को काटा और 10 उसके सिर को, और एक बार जो है उसके नाभि में जाकर उस अमृत को कलश को सुखाया जिससे संसार की इस आसुरी शक्ति का विनाश हो गया। इस प्रकार से रावण का जो हनन हुआ, और हनन हुआ लेकिन देखिए उस समय तो रावण प्रत्यक्ष रूप में था, प्रभु राम उनको मार दिए, लेकिन आज घर घर में रावण है और हमारे मन के अंदर रावण बैठा हुआ है, तो इसको मारने के लिए एक ही सहारा है, भगवान के नाम के नाम, भगवान का नाम के जो नाम की महिमा वहां पे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि ये जो नाम है जब इस नाम को लेंगे, क्योंकि कलयुग के जीवात्मा क्या करते हैं कि रावण कैसे हैं, क्योंकि और भगवान लक्ष्मी, अभी लक्ष्मी पूजा भी आएगा, लक्ष्मी जी को पूजित करेंगे, नारायण के बिना लक्ष्मी को पूजित करेंगे, है ना, तर नारायण को छोड़ देते हैं लक्ष्मी की पूजा, तो रावण ही है ना, भगवान की पत्नी को लेके क्या भगवान को नहीं लिया। तो ये इस संसार के असुर लोग हैं, रावण रावण के समान है, लक्ष्मी को स्वीकार करते हैं नारायण को नहीं, लेकिन उनको गधे को ये नहीं मालूम है कि जो लक्ष्मी जो है पतिव्रता स्त्री है, एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति को छोड़कर जाएगी नहीं, वो पति के चरण चिन्हों में ही चलेगी, तो इसलिए वो लेके तो आते हैं लक्ष्मी को, इसलिए कहते हैं ना कभी कभी कि बहुत धन आता है लेकिन पता नहीं किधर चला जाता है, चला जाता है, पता ही नहीं चलता है, सब चला जाता है, और चला ही जाएगा ना, वो लक्ष्मी पतिव्रता है, वो तो खींच के तुम पकड़ के लाया तो निश्चित रूप से चले ही जाएगी ना, वो ना भगवान के बिना थोड़ी ना रह सकती पतिव्रता स्त्री, एक स्त्री पति के बिना कैसे रह सकती है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है क्या करता है, वो नारायण को लेकर आता है, प्रभु को लेकर आता है, प्रभु राम को लेकर आता है, जब राम आए प्रभु आए नारायण आए तो उसके पीछे लक्ष्मी स्वाभाविक आएंगी ना, स्वाभाविक आएंगे। तो इसी प्रकार प्रभुपाल जी इस बात को बताते हैं कि इस संस्था में हमारे मोमेंट में ना सब लोग हनुमान जी हैं, क्या करते हैं ऐसे दुनिया भर के जो रावण है संसार में उनके जगह से लक्ष्मी को खींच के लाते हैं और भगवान के चरण में भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसलिए इस संस्था के जितने भी भक्त हैं सब हनुमान की तरह है, जाते हैं उनसे लक्ष्मी को खींच के लाते हैं और प्रभु राम की शरण में भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं थी, बहुत है, लेकिन समय का अभाव, सब लोग को ऑफिस जाना रहेगा, तो हम यहाँ पे अपनी वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सूरत भक्त वृंद की जय, बहुत बहुत धन्यवाद सेवा देने के लिए हमको, हरे कृष्णा।
क्या चला जाएगा।